तो आज हम एक बहुत ही खास दस्तावेज पर बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक है गुरुदेव के कार्यकर्ताओं से अपेक्षाएं।
जी,
ये परम पूज्य गुरुदेव ने मार्च 1984 में अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को दिया था उनके सूक्ष्मीकरण से ठीक पहले।
हाँ, मतलब जब वो स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म जगत में जाने की तैयारी में थे।
बिल्कुल, और उन्होंने कहा था कि इसे रोज पढ़ना है और जीवन में उतारना भी है।
हाँ, और दस्तावेज की शुरुआत ही देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात से होती है। साफ लिखा है कि लिखने का माध्यम भले गुरुदेव की उंगलियां थीं, पर प्रेरणा वो कहीं और से, एक उच्च सत्ता से आ रही थी।
अच्छा,
और इसमें जो योजना है जिसे युग परिवर्तन कहा गया है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। साफ कहा है कि ये सभी कार्यकर्ताओं की मिलीजुली शक्ति से ही पूरी होगी।
तो फिर चलिए इसी दस्तावेज को देखते हैं कि इस बड़े लक्ष्य के लिए कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीदें थीं, क्या अपेक्षाएं थीं।
हाँ,
सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो संसाधनों के बारे में।
हाँ, ये बहुत ही अहम है। गुरुदेव साफ कहते हैं कि कार्यकर्ता ये बिल्कुल ना सोचे कि काम कैसे होगा, साधन कहाँ से आएंगे, पैसा, लोग, ये सब।
तो फिर क्या सोचे?
चिंता इस बात की हो कि समर्पण और मेहनत में कौन सबसे आगे रहेगा। मतलब जोर बाहरी चीजों पर नहीं, अंदर की तैयारी पर है।
और इसी बात को समझाने के लिए वो हनुमान जी का उदाहरण देते हैं, है ना?
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सशक्त उदाहरण है। बताया है कि हनुमान जी की पृष्ठभूमि देखिए कितनी साधारण थी, पर उनका समर्पण वो असाधारण था। और उसी समर्पण के बल पर उन्होंने क्या क्या नहीं किया। समुद्र लांघना, पर्वत उठाना, लंका जलाना, वो काम जो असंभव लगते थे। तो गुरुदेव हर कार्यकर्ता से ठीक वैसा ही, हनुमान जैसा ही पूर्ण समर्पण और कर्तृत्व चाहते हैं। ये सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, समझिए एक मानक है।
लेकिन ये सवाल मन में आता है, देखिए हनुमान जैसा बनना ये तो बहुत बहुत ऊंची अपेक्षा है, क्या इस सब के लिए संभव है?
देखिए, यहाँ शायद मतलब एकदम नकल करने का नहीं है, बल्कि उस भावना को पकड़ने का है।
अच्छा।
हाँ, मतलब अपनी पूरी क्षमता, पूरी निष्ठा लगा देना, बिना ये सोचे कि मैं क्या कर पाऊंगा या नहीं। और दस्तावेज ये भी कहता है कि काम क्या करना है वो तो बताया जाएगा समय समय पर।
हाँ।
लेकिन जो असल चीज है वो है इस समर्पण भाव को बनाए रखना, और सिर्फ बनाए रखना नहीं, उसे लगातार बढ़ाते जाना, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए।
तो ये समर्पण सिर्फ बाहरी काम भागदौड़ में नहीं दिखना चाहिए, मतलब व्यक्ति के अंदर भी बदलाव आने चाहिए।
निश्चित रूप से, बल्कि दस्तावेज अंदर के गुणों पर बहुत ज्यादा जोर देता है।
जैसे?
जैसे अत्यधिक विनम्रता, मतलब खुद को छोटा मानना, दूसरों को बड़ा मानना, फिर स्वयं सेवक होने में गर्व महसूस करना, कोई पद या पहचान की इच्छा नहीं रखना, अथक परिश्रम करना। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, अहर्निश।
अहर्निश,
हाँ, यानी दिन रात बिना थके लगे रहना। और शायद सबसे जरूरी बात, जो भी करे उसका अहंकार बिल्कुल नहीं, वो कर्तापन का भाव कि ये मैंने किया वो नहीं आना चाहिए।
ये बात थोड़ी सोचने वाली है, अहर्निश परिश्रम मतलब दिन रात मेहनत, और दूसरी तरफ कर्तापन का भाव ना होना, इसमें थोड़ा विरोधाभास सा नहीं लगता? जब कोई इतनी मेहनत करेगा तो एहसास तो होगा ही ना।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। देखिए, दस्तावेज शायद ये कह रहा है कि मेहनत तो पूरी करनी है, जी जान लगा देना है, पर उसका जो नतीजा है, जो सफलता है, उसका श्रेय खुद को नहीं देना।
अच्छा।
उसे उस बड़ी योजना का, उस दैवीय इच्छा का हिस्सा मानना है। यहीं पर वो विनम्रता और निरहंकारिता काम आती है, और इसी संतुलन को साधना वही असली चुनौती है।
और शायद इसी साधना के लिए, इसी संतुलन के लिए आत्मनिरीक्षण पर इतना जोर है, रोज खुद से पूछने की बात।
हाँ बिल्कुल, रोज अपनी अंतरात्मा से पूछना है, क्या जो काम मुझे करना चाहिए था उसमें कोई कमी रह गई, कहीं आलस्य तो नहीं आ गया, अनुशासनहीनता तो नहीं हुई, कहीं वो अहंकार छिपकर तो हावी नहीं हो गया। ये एक तरह की रोज की अंदरूनी सफाई है, जांच है।
और इसी प्रक्रिया को दस्तावेज में अग्नि परीक्षा कहा गया है।
जी हाँ, अग्नि परीक्षा।
ये शब्द तो अपने आप में काफी गंभीर लगता है, इसका क्या मतलब है यहाँ?
अग्नि परीक्षा मतलब एक ऐसी कसौटी जो बिल्कुल परख लेती है, खरे खोटे को अलग कर देती है। दस्तावेज कहता है कि योजना तो पूरी होगी ही, वो तो निश्चित है।
अच्छा।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कार्यकर्ता का मन कैसा रहता है, उसका शरीर, उसका व्यवहार, ये सब कैसे टिकते हैं, यही उसकी असली परीक्षा है। क्योंकि ऊंचे काम करने के लिए व्यक्तित्व का भी ऊंचा होना जरूरी है, और ये ऊंचाई पद से या लंबाई से नहीं आती, ये आती है त्याग से, श्रम से और निरअहंकारिता जैसे गुणों से।
तो मतलब ये युग परिवर्तन की प्रक्रिया सिर्फ बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं है, ये कार्यकर्ता के लिए अपने आप को बदलने का, अपने अंदर रूपांतरण का एक मौका और परीक्षा भी है।
बिल्कुल सटीक कहा आपने। और इसी से जुड़ी एक और बात है, निर्देश है कि अपने साथियों की श्रद्धा और क्षमता को घटने ना दें।
अच्छा, दूसरों का भी ध्यान रखना है।
हाँ, बल्कि उसे बढ़ाने में मदद करें। एक अच्छा सकारात्मक माहौल बनाना भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आगे मिशन का काम बहुत फैलने वाला है। और उसके लिए हर स्तर पर, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक, एकदम उच्चतम स्तर की तैयारी चाहिए होगी। ऐसी तत्परता कि व्यक्ति का अपना अंदर का मन भी संतुष्ट हो और वो प्रेरक सत्ता भी उसे अपने पास महसूस करें।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये दस्तावेज कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ कुछ करने की लिस्ट नहीं है, ये तो समर्पण, विनम्रता, अथक प्रयास और लगातार आत्म सुधार के जरिए एक ऊंचे व्यक्तित्व को बनाने का आह्वान है।
जी, लक्ष्य जितना बड़ा है यानी युग परिवर्तन, उसे पाने के साधन यानी कार्यकर्ता, उनका चरित्र भी उतना ही मजबूत, उतना ही उन्नत होना चाहिए। बिल्कुल। और ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि जब लक्ष्य इतना विराट हो और रास्ता अग्नि परीक्षा जैसा कठिन बताया गया हो और हर पल खुद को जांचने की जरूरत हो, तो कोई इंसान थकान, निराशा या फिर अहंकार के जो छोटे छोटे जाल होते हैं, उनसे बचते हुए अपने समर्पण और विनम्रता की उस लौ को लगातार जलाए कैसे रख सकता है।
हाँ, ये तो है।
शायद यही संतुलन साधना, यही इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा और सबसे व्यक्तिगत हिस्सा है।